प्रथम अध्याय आधुनिकता और आधुनिकता बोध पृष्ठ संख्या एक। आधुनिक हिंदी उपन्यासों में आधुनिकता के प्रश्न को सृजनात्मक स्तर पर हल किया गया है। यहाँ नए परिदृश्य और जीवन की चुनौतियों को गहरे स्तर पर समझा गया है। आधुनिकता का अनिवार्य संबंध आधुनिक काल की आधुनिक चेतना से है, जिसके अंतर्गत जीवन के परिवर्तन और विकास को उसके समग्र ऐतिहासिक प्रक्रिया में समझने के लिए संघर्ष किया जाता है। इस दृष्टि से आधुनिकता अतीत से विच्छिन्न अथवा वर्तमानता से आक्रांत या भविष्य से सम्मोहित आर्तवादी दृष्टि नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत जीवन को समग्रता में देखने का प्रयत्न सन्निहित है और उन मूल्यों के लिए संघर्ष जारी है जो मानव समाज के परिवर्तन और विकास को शक्ति प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से आधुनिकता का परंपरा से अनिवार्य संबंध है। पैराग्राफ चेंज। आधुनिकता का अनिवार्य संबंध आधुनिक युग से है। आधुनिक युग का जन्म मध्यकालीन परिस्थितियों और आधुनिक चेतना के संघर्ष से होता है। कुछ विद्वान आधुनिक युग को अंग्रेजों के प्रभाव से जोड़कर देखते हैं। यहाँ वे उस वैज्ञानिक औद्योगिक परिवर्तन की बात कहते हैं जिसका श्रेय प्रत्यक्षतः अंग्रेजों को दिया जाता है, किंतु यह सही नहीं है। भारतीय संपदा और संसाधनों के व्योहन के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज में कुछ ऐसी प्रणालियां लागू की गई जिसके द्वारा भारतीय समाज में परिवर्तन की लहर तेज हो उठी। आगे चलकर जिसका संबंध उस नवजागरण कालीन चेतना से भी हुआ, जिसके अंतर्गत सामंतवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवादी विरोध की बात उठी, जो क्रमशः एक व्यापक आंदोलन के रूप में विकसित हुई, किंतु अंग्रेज ऐसा कतई नहीं चाहते थे। शिक्षा, औद्योगिकरण, पत्र प्रकाशन आदि को उन्होंने मात्र अपने शासन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए लागू किया था। यह आवश्यक है कि इसके द्वारा ज्ञान विज्ञान की अंतरक्रिया से संवेदनशील एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ जिसके कारण मध्यकालीन समाज की जड़ताओं पर प्रहार तेज होता गया। इस प्रकार 18वीं शताब्दी का समय भारतीय समाज और संस्कृति को आधुनिक चेतना की ओर ले जाने की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील समय है। पैराग्राफ चेंज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ईसाई मिशनरियों का प्रकाश, नई शिक्षा का सूत्रपात पृष्ठ संख्या दो, हिंदी पत्रकारिता का जन्म, नए उद्योग धंधों की स्थापना, तार घर, रेलवे और यातायात के नए साधनों का आविर्भाव, भारत में नए युग का जन्म हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यह केवल राजनीतिक संघर्ष का काल नहीं था, केवल सामाजिक शक्तियों के एक दूसरे से टकराने का भी समय नहीं था, बल्कि एक नवीन युग के जन्म लेने का समय था। यहाँ से हमारा देश नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया और उसके साथ ही साथ देश की साहित्यिक चेतना भी नवीन दिशा की ओर मुड़ी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुस्तक है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, पृष्ठ संख्या 203। पैराग्राफ चेंज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यिक चेतना के संदर्भ में जिस नवीनता का उल्लेख किया है उसका संबंध उस जागरण से है जिसके द्वारा भारतीय समाज ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध दृढ़ता के साथ एकजुट हो पाता है। इस प्रकार ब्रिटिश कालीन भारत अंग्रेजों की कृपा से आधुनिक होता हुआ भारत नहीं था, बल्कि उनकी दासता के विरुद्ध संघर्ष के लिए पूरी तैयारी के साथ उठता हुआ भारत था। नवजागरण कालीन नेताओं, समाज सुधारकों और साहित्यकारों के लिए आधुनिकता वह दृष्टि थी जिसके द्वारा भारत का आधुनिक और स्वाधीन स्वरूप निर्मित हो पाता। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार साहित्य के लिए आधुनिकता वह चेतना है जिसके द्वारा उसका सामंतवाद साम्राज्यवाद विरोध पुष्ट हुआ। पैराग्राफ चेंज। भारतेंदु, निराला और प्रेमचंद की परंपरा आधुनिक चेतना से संपन्न लेखकों की परंपरा रही है। आजादी के बाद पांचवें दशक में पूंजीवादी लोकतंत्र के अंतर विरोधों से प्रेरित ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जिनके कारण परंपरा और आधुनिकता के संबंध को लेकर एक विवादास्पद स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है। इस समस्या को नव उपनिवेशवादी चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यहाँ सत्ता और पूंजी की समर्थक विचारधाराओं द्वारा आधुनिकता सहित तमाम चीजों की ऐसी व्याख्या की जाती है जिसके द्वारा साहित्य और जीवन के केंद्र से मनुष्य और उसके मूल्यवान संघर्ष को हटा दिया जाता है। इसकी मंशा साहित्य को व्यापक जनता से काटकर सीमित कर देने की है। उन्हें जनता के संघर्ष से भय है। ये उसके लिए शोषण की नई नई परिस्थितियां बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए ये साहित्य या आधुनिकता की व्याख्या कुछ इस रूप में करते हैं, जिसके द्वारा नव धनाढ्य और नव प्रबुद्धियों का हित साधन तो होता है मगर व्यापक जनता के मुक्ति संघर्ष की अवहेलना भी होती है। यहीं से आधुनिकता की आधुनिकतावादी, कलावादी और मूलतः क्रांतिवादी व्याख्याओं का सिलसिला शुरू होता है। पैराग्राफ चेंज। दूसरी तरफ आधुनिकता को परंपरा से अनवरत सृजनात्मक संवाद के साथ देखने वाले वे विचारक और रचनाकार हैं जिनकी दृष्टि आज भी पूंजीवादी साम्राज्यवाद और उसी शक्ति देने वाले रुग्ण सामंतवाद के संघर्ष पर केंद्रित है। इनके चिंतन और साहित्य के केंद्र में व्यापक जनता और उसका सुख दुख है। जीवन को व्यक्तिवादी दृष्टि से देखने का नजरिया यहाँ संस्तुत नहीं किया जाता। रचनाकार यहाँ चीजों को उन समग्रता में समझने के लिए संघर्ष करता है। पृष्ठ संख्या 3। व्यक्ति समाज और घटनाओं को उनकी सापेक्षता में समझने की समझदारी यहाँ देखी जा सकती है। यह दृष्टि अनिवार्यतः मार्क्सवादी जीवन दर्शन से प्रभावित है। इसीलिए पूंजीवाद और पूंजीवादी समर्थक विचारधाराओं, वस्तुओं और घटनाओं के निहित अंतर विरोधों की जांच इसके लिए अनिवार्य है। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार आधुनिकता की सार्थक व्याख्या के लिए परंपरा से उसके द्वंद्वात्मक संबंध को जानना जरूरी है। यहाँ उस इतिहास बोध अथवा विवेक की भी आवश्यकता पड़ती है जिसके द्वारा परंपरा के गतिमान और विकासशील रूप को समझा जा सकता है। परंपरा के अंतर्गत मानव समाज के द्वारा निरंतर व्यवहार में आने वाले वे मूल्य, वे अनुभव और वे स्मृतियां संचित होती हैं जिनकी उपयोगिता अनवरत बनी रहती है। ये चीजें जीवन के विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया से जुड़कर अनवरत परिष्कृत और परिमार्जित होती चलती हैं। यही कारण है कि इनकी उपयोगिता और मूल्यता बनी रहती है। परंपरा को भीतर जीवन के प्रश्नों को हल कर सकने की क्षमता विद्यमान होती है। जब कभी परंपरा इस प्रकार की शक्ति से चूक जाती है तब वह व्यर्थ और निष्प्राण हो जाती है। कालांतर में वह अपने सही परिप्रेक्ष्य और तर्क से परे हो जाती है और रूढ़ियों और अंधविश्वासों में जाकर जड़ हो जाती है। समाज वैज्ञानिकों और चिंतक साहित्यकारों ने परंपरा और रूढ़ी के अंतर को समझने के लिए बराबर संघर्ष किया है। वस्तुतः यह वह वैज्ञानिक इतिहास बोध अनिवार्य है जिसके द्वारा चीजों को वस्तुपरक ढंग से उनके सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय संस्कृति की सतत प्रवाह मानता को समझने के लिए आधुनिकता और परंपरा के द्वंद्वात्मक संबंध को विवेक के साथ समझने पर बल दिया है। वे बराबर कहते रहे हैं कि आधुनिकता चलने की प्रक्रिया में यदि मनुष्य का आगे बढ़ा हुआ पैर है तो परंपरा पीछे टिका हुआ वह पैर है जिसके द्वारा आगे बढ़े हुए पैर को आधार मिलता है। उनका स्पष्ट मत है कि कोई भी संस्कृति नई चुनौतियों से तब तक नहीं टकरा सकती जब तक उसके पास परंपरा का संचित सार नहीं होता। भारतीय मनीषा के एक बड़े हिस्से ने द्विवेदी जी के चिंतन को आगे बढ़ाया है। द्विवेदी जी की दृष्टि भारतेंदु, प्रेमचंद, निराला और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वस्तुवादी चिंतन दृष्टि का ही विकास करती है। मार्क्सवादी स्थापनाओं को यहीं से शक्ल मिलती है और यहीं से भारतीय परिप्रेक्ष्य को समझने का विवेक भी प्राप्त होता है। इस प्रकार मार्क्सवादी दर्शन के अंतर्गत आधुनिकता की जो सार्थक व्याख्या मिलती है वह सार्थक इसलिए है क्योंकि उसका विकास आधुनिक युग की नई चुनौतियों और नए सवाल का मानवतावादी दृष्टि से समाधान खोजने के क्रम में हुआ है। पैराग्राफ चेंज। आधुनिक विश्व के तीन विचारकों ने अलग अलग स्तरों पर अपने अपने ढंग से मानव समाज के विकास से जुड़े सवालों को सुलझाना चाहा है। ये तीन विचारक हैं अल्विन, फ्रायड और मार्क्स। मार्क्स ने विश्व चिंता को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने के लिए संघर्ष किया है और इसके लिए अपने पूर्ववर्ती और समकालीन दर्शन का सावधानी के साथ अध्ययन किया है और अपने निष्कर्ष निकाले हैं। मार्क्स का चिंतन पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर विरोधों की जांच करता हुआ विश्व मानव के लिए साम्यवादी भविष्य की आकांक्षा पर केंद्रित है। यही कारण है कि कोई भी समकालीन प्रश्न मार्क्स से ओझल नहीं रहा, विशेष रूप से पूंजीवादी साम्राज्यवाद की शोषक। पृष्ठ संख्या 4। आकांक्षाओं की समझ मार्क्स के यहाँ पुख्ता है। यही कारण है कि दुनिया के तमाम देशों के जीवन और साहित्य को कठिन परिस्थितियों में डाल देने वाले उसके षड्यंत्रों का भी ज्ञान मार्क्स को रहा है। भारत और भारतीय साहित्य की मुख्य समस्या यही पूंजीवादी साम्राज्यवाद है, जिसने इसकी राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति को निरंकुशता पूर्वक पराधीन बनाया। सामाजिक रचनाकारों ने साहित्य को समाज के आगे चलने वाली मशाल कहा है। मार्क्स भी साहित्य और संस्कृति को अधिरचना के भीतर ही मानता है, मगर आधार से इसके द्वंद्वात्मक रिश्ते के तहत इसकी क्रांतिकारी भूमिका को भी स्वीकार किया। उसका यह मानना है कि व्यापक जनता की मुक्ति के संघर्ष से जुड़ा साहित्य ही सार्थक हो सकता है। इस दृष्टि से आधुनिक विरोध और विद्रोह की वह चेतना है जो व्यापक जनता की मुक्ति संघर्ष को जीवित रखती है और आगे बढ़ाती है। पैराग्राफ चेंज। अस्तित्ववाद पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर विरोध की खोज दूसरे ढंग से करता है। अस्तित्ववाद व्यक्तित्ववादी दर्शन है। सार्थ, कार्ल, यास्पर्स आदि अनेक अस्तित्ववादी विचारक हुए हैं। इनके चिंतन में व्यक्ति परकता पर जितना जोर है कि ये चिंतक इस दर्शन का परस्पर विकास नहीं करते, अपितु मानव अस्तित्व और समाज के संबंधों के बारे में अलग अलग धारणाएं प्रस्तुत करते हैं। पैराग्राफ चेंज। अस्तित्ववाद का जन्म विश्व युद्धों के आक्रांत यूरोप की भयावह परिस्थितियों में हुआ है। शिव प्रसाद सिंह ने इस परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, तकनीकी ज्ञान विज्ञान ने जहां मनुष्य को दैनंदिन क्रियाकलाप में अभूतपूर्व सहायता दी, वही उसके संघातक अस्त्रों शस्त्रों के निर्माण द्वारा ऐसी जटिल समस्या भी उत्पन्न कर दी कि लगने लगा कि मानवता की सुरक्षा का कोई मार्ग नहीं है। सबसे बड़ी मजबूरी तो यह है कि अपने द्वारा पैदा की गई मशीनों के आगे ही आदमी बौना हो गया है। इन मशीनों के कारण आदमी और आदमी के बीच का रिश्ता टूटता गया। व्यापक पैमाने पर बनने वाली वस्तुओं पर आदमियों के स्पर्श के स्थान पर मशीनों की मुहर लगने लगी। औसत आदमी मशीनों का दास बन गया और अपनी जीविका के लिए उसके कान निरंतर मशीनों में भूपों पर लगे रहने लगे। इस कारण जीवन में एक ऐसा विद्रूप तत्व उत्पन्न हुआ जिसे हम तकनीकी अलगाव कह सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ शिव प्रसाद सिंह, पुस्तक है आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद, पृष्ठ संख्या 2-3। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार अस्तित्ववादी दर्शन में मुख्य समस्या अलगाव या एलियनेशन की है। यह भी पूंजीवादी व्यवस्था में मनुष्य की स्थिति और परिस्थिति को जांचने का एक दृष्टिकोण है जो यथार्थ केंद्रित तो है मगर सकारात्मक नहीं है। यह मुख्यतः मनुष्यों के बीच किसी स्वाभाविक संबंधों की खोज नहीं की जाती है, अर्थात ऐसे संबंधों की खोज की जाती है जिनके अंतर्गत मनुष्य की परस्पर सहयोगी और सक्रिय संबद्धता होती है। इसीलिए यह दृष्टि प्राय नगरीय जीवन से आक्रांत है। व्यक्ति के अकेलेपन की त्रासदी को यहाँ बहुत सहानुभूति पूर्वक देखा जा सकता है। अस्तित्ववाद ने भारत में उन चिंतकों और साहित्यकारों को विशेष रूप से प्रभावित किया है जिनकी दृष्टि व्यक्तिवादी रही है, जिनका जनता के जीवन और मुक्ति संघर्ष से जुड़ाव नहीं रहा है। पृष्ठ संख्या 5। ऐसे लेखकों ने सत्य और पूंजी की आकांक्षाओं के अनुरूप ही लिखा है। अपने लेखन से ये विरूप आक्रांत और विसंगति पूर्ण जीवन की अपरिवर्तनीयता के प्रति विश्वास पैदा करते रहे हैं। यद्यपि इस प्रकार के यथार्थ के प्रति इनकी दृष्टि आलोचनात्मक रही है, वस्तुतः इस प्रकार के लेखक अपने वर्गीय अंतर विरोधों से आक्रांत हैं, ये जीवन के सक्रिय संघर्ष में भागीदारी की चुनौती से बचते हुए लिखते हैं, इसीलिए इनका लेखन क्रमशः एक विडंबना का शिकार हो जाता है। पैराग्राफ चेंज। अस्तित्ववादी दृष्टि से आधुनिकता को उसके सापेक्षिकता के साथ नहीं देखा जाता है, उसे प्रायः काल अतीत या भविष्य से विच्छिन्न मान लिया जाता है। यहाँ प्रायः जीवन के लिए सर्वथा जटिल और विपरीत हो चुकी परिस्थितियों की खोज की जाती है और इनके भीतर मनुष्य के कठिन तथा पराजय के लिए अभिशप्त जीवन संघर्ष का चित्रण किया जाता है। यही कारण है कि आधुनिकता और आधुनिकता बोध से संपृक्त और संभावनापूर्ण रूपों का विकास यहाँ नहीं दिखाई देता। इस दृष्टि से आधुनिकता बोध युगीन संकट का आक्रांत बोध है। इस संकट के बीच अकेला व्यक्ति अपने घुटन के साथ जीवन के प्रति विद्रोही होता है। कीकगार्थ नामक अस्तित्ववादी विचारक ने मानव समाज को सहानुभूतिहीन भीड़ माना है। यह अवश्य है कि यह विचारक अपने व्यक्ति में व्यक्तित्व की सारी क्षमताएं उभारने की बात कहता है। इस प्रकार यह व्यक्ति को सार्थक अस्तित्व की खोज के लिए उकसाता है, मगर व्यक्ति की सीमाएं ही हैं। अस्तित्ववादियों की तरह की गर्द ने ही इस प्रश्न के महत्व को नहीं समझा है। कामू, सार्थ, काफ्का और कार्ल यास्पर्स जैसे दार्शनिक की गर्द से भिन्न प्रकार से आधुनिक मनुष्य के अस्तित्व की समस्या को लेते हैं। पैराग्राफ चेंज। कार्ल यास्पर्स आस्तिक किस्म का अस्तित्ववादी विचारक है। कार्ल की सीमाओं की समझ उसे ईश्वर जैसी किसी बड़ी सत्ता के प्रति उन्मुख करती है। इस प्रकार के चिंतन के मूल में उसकी मनुष्य की सार्थकता की समझ है। इस प्रकार यास्पर्स के लिए भी जीवन जटिल परिस्थितियों द्वारा आक्रांत और विजित है। सार्त्र ने जीवन की घोर भयावहता के संदर्भ में मानव अस्तित्व के प्रश्न का हल पाना चाहा और उसका निश्चय था कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु उसकी अपनी स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता को वह चुनने की स्वतंत्रता भी मानता है। इस प्रकार अस्तित्ववादी विचारकों के लिए जीवन को यथार्थ अकेलापन, परायापन, विसंगति, संत्रास, घुटन, पीड़ा और निरर्थकता आदि का बोध था। उनके यहाँ ये चीजें व्यक्ति की निजी पीड़ाओं के संदर्भ में समझी गईं। यहीं से उन्होंने अनुभूति की प्रामाणिकता, अभिव्यक्ति की विश्वसनीयता आदि के तर्क दिए। अस्तित्ववाद से प्रभावित रचनाकारों ने भी जीवन को उसकी समग्रता और सापेक्षता में देखने के अनिवार्य तर्क को दूर ठेल दिया तथा भोगे हुए यथार्थ के तर्क को सर्वोपरि माना। इन रचनाकारों ने व्यक्ति और समाज के अलगाव को मुख्य मानकर चरित्रों या घटनाओं की रचना की। यह रचना दृष्टि यथार्थ चित्रण के संदर्भ में वर्तमानता से अत्यधिक आक्रांत रही है, इसीलिए इस प्रकार की रचनाओं में अनिवार्य प्रश्नाकुलता तो देखी जा सकती है, किंतु किसी भी प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने का संघर्ष नहीं दिखाई देता। भारतीय परिदृश्य में अस्तित्ववादी लेखकों की अपनी चारागाह नगरों और महानगरों में बनी है, जहां पूंजीवाद की चिक्र रुग्णता का दबाव अत्यधिक है, पृष्ठ संख्या 6, तथा आर्थिक कारणों से समाज नष्ट हो रहा है। यह नया समाज अपनी जड़ों से कटा हुआ होने के कारण कृत्रिम और अभिशप्त है। यहाँ चीजों और मनुष्य आधे अधूरे और निरुपाय हैं। मानवीय संबंधों का ताप जीवित अवश्य है, किंतु वह लेखक और उसके द्वारा भोगे जाते हुए यथार्थ की सीमाओं से परे है। इन तमाम चीजों के पीछे विश्व पूंजीवाद के आगे नतमुख भारतीय लोकतंत्र की वे विकलताएं हैं जो उसके जनता की व्यापक आकांक्षाओं से करने के कारण सामने आती हैं। इस प्रकार अस्तित्ववादी चिंतन से गहरे प्रभावित होने की जमीन भारत में अवश्य है और इससे प्रभावित रचनाकारों की एक बड़ी संख्या हमारे यहाँ है। वहाँ पर यथार्थ के ज्यादा मार्मिक और प्रभावशील रूपों का चित्रण भी दिखाई देता है, किंतु इन तथ्यों को ठीक ठीक जानने के लिए वर्ग विभाजित समाज के चरित्र को जानना जरूरी है तथा उन नागरीय महानागरीय स्थितियों को उनके प्रतिफलन करने वाली शक्तियों के साथ जानना जरूरी है, जिनके कारण रचनाकारों के लिए जीवन का यथार्थ विसंगति और कुरूपता के स्तर पर ही ज्यादा प्रामाणिक हो उठता है। अस्तित्ववादी रचनाकारों ने भी जीवन की असंगति और अमानवीय स्थितियों के प्रति विरोध प्रकट किया है, किंतु उनका विरोध आत्मघाती प्रकार का है। यह एक गीली लकड़ी की चुपचाप सुलगने जैसा है, जिससे धुआं ही धुआं होता है, प्रकाश थोड़ा भी नहीं। यह एक प्रकार की आत्मग्रस्तता प्रभावी रही है, निसंदेह लेखक के स्तर पर ही। यह काफी हद तक रचनाकार के अपने वर्गीय अंतर विरोधों और सीमाओं की उपज है, जिसके द्वारा जीवन की गतिशील, संघर्षपूर्ण और संभावनापूर्ण रूप न देखा जाकर उसका अवरुद्ध और नारकीय रूप ही देखा जाता है। इस प्रकार अस्तित्ववादी विरोध जीवन की पुरातनता, गलतियों, रुग्णताओं और बंधनों का विरोध होकर भी मुक्ति के उपाय की चिंता करने वाला विरोध नहीं है। निश्चय ही यह एक विकल्पहीन विरोध है। इसके द्वारा व्यक्ति के होने का बोध कितना ही चरम रूपों में क्यों न हो, अकेलेपन के कारण वह सर्वथा अपर्याप्त है। निश्चय ही इसके आत्मसंतोष का कोई भी सार्थक स्वरूप नहीं बनता होगा। अपनी पूरी मार्मिकता के बावजूद यह एक अधूरी और बीमार घटना है। इससे जन्मे हुए आक्रोश, अस्वीकार या विसंगति बोध भी बंद और असहाय है। पैराग्राफ चेंज इस प्रकार इन्वर्टेड कॉमा ओपन। आधुनिकता का संबंध मानव व्यक्तित्व की खोज से ही नहीं है, मानव मुक्ति की गतिशील धारणा से भी है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ नरेंद्र मोहन, पुस्तक है आधुनिकता के संदर्भ में हिंदी कहानी, पृष्ठ संख्या 15। पैराग्राफ चेंज। आधुनिकता की यह समझ व्यक्ति और समाज के द्वंद को सटीक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जानने पर निर्भर करती है। इससे चूक जाने पर मानव अस्तित्व और सामाजिक यथार्थ का संबंध दो अलग अलग छोरों पर अटक सकता है और रचनाकार अपनी सीमाओं का शिकार होकर किसी एक छोर पर अटक सकता है। इसीलिए रचनाकार के लिए आधुनिकता और आधुनिकता बोध के मुद्दे सामाजिक विकास की उस प्रक्रिया में समझा जाना अनिवार्य है, जिसे आर्थिक और राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। निश्चय ही यह मार्क्सवादी दृष्टि से आधुनिकता को समझने का संदर्भ है। समाज व्यवस्था की अवरुद्धता, रुग्णता या निरर्थकता से विद्रोह का एक रूप यहाँ भी घटित होता है। पृष्ठ संख्या 7। मगर यह विद्रोह सामूहिक, सक्रिय और विवेकपूर्ण होता है। इसके भीतर जीवन को उसकी जांच और अपराजेयता के साथ पहचान लेने की शक्ति होती है, तथा यह व्यापक जनता के जीवन के अमूल्य और अपरंपार अनुभवों से समृद्ध होता है। यहाँ भी व्यक्ति और समाज के अंतर विरोधों की आलोचना होती है और पूंजीवादी समाज की अभिशप्त देन सृष्टि नियसन की बात भी। मगर यह सब कुछ शक्ति के व्यापक और संगठित स्रोतों को तलाशने के लिए भी होता है। इस प्रकार की रचनाशीलता के लिए भी खतरा उन वर्गीय अंतर विरोधों की ओर से ही है, जिनके कारण रचनाकार विचारधारा को किसी निजी सुविधा के नाते चुनकर वैचारिक फार्मूले बाजी का शिकार हो जाता है। जीवन और उसके अनुभवों को गहरे थाहाने की चुनौती से बचता हुआ लिखना चाहता है। इस प्रकार उसे आसानी तो होती है, मगर जल्दी ही वह अपने हल का शिकार हो जाता है। रचनाशीलता अपने लिए जरूरी संघर्ष और साहस के बल पर ही जीवित रह सकती है। इस प्रकार फार्मूलावादी लेखन के उदाहरण बराबर मिल जाते हैं, मगर विचारधारा को गहरी अंतर्दृष्टि के रूप में विकसित करने वाले लेखकों की भी शानदार परंपरा है। पैराग्राफ चेंज। आधुनिकता को रुग्ण सामंती मध्यकालीनता के साथ साथ साम्राज्यवाद से विरोध के रूप में लेने वाले रचनाकारों की पहली अनिवार्य कड़ी भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जिनके गद्य लेखन में यह अग्नि बीज तरीके से विकसित किया है। प्रेमचंद्र का सारा लेखन स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में खड़ा होता है और उनकी सतर्क दृष्टि इस आंदोलन के अंतर विरोध पर है। राजनीति के क्रमशः संपत्तिशाली वर्गों के हितों में चले जाने की बात को प्रेमचंद ने सर्वाधिक निर्भकता पूर्वक लक्षित किया है। वे भारतीय समाज के उन प्रश्नों से पूरी संबद्धता के साथ टकराते हैं, जिनके मूल में बहुत दूर तक औपनिवेशिक परिस्थितियों का हाथ है, तथा जिनकी आकांक्षा अपने हितों के लिए भारत की रुग्ण सामाजिक स्थितियों को बनाए रखने की है। प्रेमचंद पूरी जिम्मेदारी और बेचैने के साथ भारतीय समाज के जड़ पुरानेपन से टकराते हैं और उन शक्ति स्रोतों की तलाश करते हैं, जिनके संघर्ष से भारत की आत्मनिर्भर और मुकम्मल प्रकार की स्वाधीनता संभव हो सकती है। यह अनायास नहीं है कि प्रेमचंद किसान चेतना के कथाकार हैं। उनके लिए मनुष्य की मुक्ति का आशय किसान मजदूर जनता को सामंती साम्राज्यवादी शोषण से मुक्ति देने की है। पैराग्राफ चीन, स्वाधीन भारत उन्हीं आर्थिक राजनीतिक विचलनों का शिकार हुआ है जिन्हें प्रेमचंद ने साफ साफ देख लिया था। यह अनायास नहीं है कि पांचवें दशक से उस विचारधारा और साहित्य का स्वर ज्यादा मुकर और चर्चित हो उठा जिसका कोई संबंध प्रेमचंद की परंपरा से नहीं था। प्रेमचंद की परंपरा का अर्थ है साहित्य में उस संघर्ष को जीवित रखना जिसके द्वारा व्यापक जनता की मुक्ति संभव होती है। प्रेमचंद के बाद उभरे हुए जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और अस्क जैसे रचनाकारों की दृष्टि में व्यक्ति और उसके निजी अनुभवों के संदर्भ ज्यादा मूल्यवान हो उठते हैं। यह समय भारतीय परिस्थितियों में साम्राज्यवादी पूंजीवाद समर्थक विचारधाराओं के मुख्य हो उठने का था। यहीं से आगे चलकर उस सांस्कृतिक आजादी की बात उठाई गई जिसकी पूरी मंशा मार्क्सवाद विरोध की थी और जिसे अंततः व्यक्तिगत स्वाधीनता की बात साबित करनी थी। पृष्ठ संख्या 8। इसी जमीन से नई कहानी, नई कविता और नए उपन्यास के वे आधार मजबूत हुए जिस पर राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश और धर्मवीर भारती जैसे लेखक स्थापित हुए। ये तमाम रचनाकार उन नई परिस्थितियों से आक्रांत हैं जिन्होंने पारस्परिक समाज को छिन्न भिन्न कर डाला है, जिसके अंतर्गत समूची मूल्य प्रणाली प्रश्नांकित हो उठी है तथा जिनके द्वारा मानव संबंधों के निर्भय और असह्य रूप सामने आ रहे हैं। सारा आकाश, उखड़े हुए लोग ब्रैकेट में राजेंद्र यादव या अंधेरे बंद कमरे ब्रैकेट में मोहन राकेश जैसे उपन्यासों के लेखकों ने जीवन के यथार्थ को मनगढ़ंत ढंग से नहीं लिया है और न ही जीवन की विसंगतियों को सही करार देने का अविवेक उनमें है। वे इन्हें तीखी आलोचनात्मकता के साथ देख रहे हैं किंतु उनके इस प्रकार देखने में उस आत्मपरकता की भूमिका निर्णायक हो उठी है जिसके द्वारा स्थितियां विकल्पहीन और त्रासद दिखाई देती है। अधेरे बंद कमरे में राकेश एक बंद और आलग्रस्त चरित्र की समस्याओं से टकरा रहे हैं और एक खास प्रकार की मुग्धता के चलते वे अपने नाटक को पूरी सहानुभूति देते दिखाई देते हैं। पैराग्राफ चेंज। भारती या राकेश जैसे उपन्यासकारों के समानांतर भीष्म शाहनी, अमरकांत, भैरव प्रसाद गुप्त, नागार्जुन जैसे उपन्यासकार भी हुए हैं जो उस दौर की आधुनिकतावादी रुझान के कारण हाशिए पर दिखाई देते हैं। ये रचनाकार प्रेमचंद की विद्रोही चेतना को स्वाधीन भारत की जटिल वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में विकसित करते हैं। ये सगुम्फित और कठिन यथार्थ की नाना चुनौतियों से गहरी सर्जनात्मकता के साथ जुड़ने वाले उपन्यासकार हैं, जो विरोध या विद्रोह की कीमत देना जानते हैं। ये निर्भय शहरीकरण और भटकावपूर्ण आधुनिकीकरण के सवाल से भी टकराते हैं। असमान सामाजिक विकास से जन्मे सवालों को भी ये रचनाकार पूरी समझदारी के साथ उठाते हैं तथा श्रम के शोषण पर टिकी पूंजी और सत्ता की निरसंस साझेदारी इनसे कतई छिपी नहीं है। शहर और देहात, नया और पुराना, उद्योग और श्रम, विकास और मुनाफाखोरी के द्वंद और विडंबना पर भी इनकी दृष्टि रही है। इन्हीं की कोख से जन्मे हुए राष्ट्र, राष्ट्रीयता, संस्कृति, धर्म, भाषा और संप्रदाय आदि को उछालने वाली उन विश्वसनीय स्थितियों और दबावों की भी जानकारी उन्हें है जिनके द्वारा आधुनिकता और आधुनिकीकरण में खतरनाक किस्म की झोल आ जाया करती है और राष्ट्रों की स्वाधीनता खतरे में पड़ जाया करती है। यही नहीं अपितु इस उपन्यासकारों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ मार्क्सवादी विचारधारा को भारतीय जीवन को समझने वाली मूल्यवान अंतर्दृष्टि के रूप में विकसित करने के लिए भी संघर्ष किया है। इस प्रकार उनकी प्रतिबद्धता आंतरिक और सृजनात्मक है। नागार्जुन के उपन्यास बलचर्मा, वरुण के बेटे, भीष्म साहनी के उपन्यास तमस, भैरव प्रसाद गुप्त के गंगा मैया, सीता मैया का चौरा तथा धरती आदि उपन्यासों में मानव समाज को उसके इसी मूल्यवान संघर्ष के संदर्भ में समझाया गया है। यहाँ यथार्थ या आधुनिकता बोध को अवरुद्ध व्यक्तिवादिता, निर्गुण कलावादिता या ऊपरी विचारवादिता से अलग गहरी सृजनात्मक अंतर स्थिति में विकसित किया गया है। इसी रचनात्मक संयम को समझाने के लिए डॉक्टर रमेश कुलतन मेघ ने लिखा है, इन्वर्टेड कमा ओपन, यथार्थता के सच्चे कलात्मक प्रत्यक्षीकरण के लिए ऐतिहासिक व्याख्या का ग्रहण और अंध परंपराओं का परित्याग, सामूहिक अनुभवों की प्रामाणिकता की स्वीकृति और आंतरिक व्यर्थता की अस्वीकृति करनी ही पड़ती है। हमें सर्वदा ही दो विकल्पों और विरुद्धों में से पहले एक को चुनना ही होता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ रमेश कुंतल मेघ, पुस्तक है क्योंकि समय एक शब्द है, पृष्ठ संख्या 29। पैराग्राफ चेंज, मेघ जी निश्चय ही यहाँ स्पष्ट पक्ष घटना की बात कर रहे हैं। उनकी इस बात का संबंध युवा लेखन से है, जिसके अंतर विरोध की अनदेखी मेघ जी से हुई है, मगर जहां तक पक्षधरता के चरित्र की बात है, उनकी धारणा उचित है। पैराग्राफ चेंज, नागार्जुन और भीष्म साहनी की पीढ़ी के रचनाकारों के लिए आधुनिकता बोध मूल्यों और अनुभवों के संक्रांत और जटिल रूपों का बोध तो है, किंतु यह अत्यंतिक स्तर पर संकट बोध निश्चय ही नहीं है। जीवन को गहरे जुड़ाव के साथ देखने वाली लेखकीय दृष्टि उसके उस ताप को समझ जाती है, जिसके द्वारा मानव श्रम और कर्म की अपराजेयता का विश्वास बना रहता है। निश्चय ही इन लेखकों का आशावाद हवाई आशावाद नहीं है, अपितु यह जीवन के कठिन संघर्षों से उठता हुआ दिखाई देता है। ऐसा भी नहीं है कि इसके पीछे लेखक की सरल सुधारवादी रुझान काम कर रही हो। जीवन की जटिलता की चुनौती यहाँ भी बनी हुई है, मगर इन लेखकों के लिए यह कतई अभेद्य नहीं है। आश्चर्यजनक यह है कि ये लेखक इसे सरलता पूर्वक भेदते हुए दिखाई देते हैं। इसके लिए वे चुने गए समाज या चरित्र की संपूर्ण अंतर चेतना में प्रवेश करते हैं। पैराग्राफ चेंज, इस प्रकार मार्क्सवादी उपन्यासकारों के लिए जीवन एक त्रासद अनुभव नहीं है। आधुनिकता इनके लिए वह संपूर्ण चेतना है, जिसके द्वारा मनुष्य के मुक्ति संघर्ष के अनवरत प्रयत्न को पोषण मिलता है। आधुनिकता बोध के अंतर्गत अधिक पूर्ण और मानवीय जीवन के योग्य मूल्य प्रणाली के लिए भी स्थिति निर्मित करने की बात प्रधान होती है। पैराग्राफ चेंज, प्रमुख हिंदी लेखिकाओं की रचनाशीलता का विकास जिस दौर में हुआ, उसे आधुनिकतावाद से आक्रांत दौर माना जा सकता है। उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी और कृष्णा सोबती जैसी लेखिकाओं में संक्रांत समय के मुश्किल रूपों को समझाने और व्यक्त करने का संघर्ष ज्यादा गहरे रूपों में दिखाई देता है। महाभोज, जिंदगी नामा जैसे उपन्यास को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि मन्नू भंडारी और कृष्णा सोबती ने आधुनिकता को सृजन की अनिवार्य और गंभीर जरूरत के रूप में लिया है, और प्रत्येक स्तर पर यह उनके लिए एक बीमार और खत्म होते हुए समाज से लड़ने की शक्ति है। किंतु यही बात उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग के संदर्भ में नहीं कही जा सकती, यद्यपि ये गंभीर साहित्यिक महत्व की लेखिकाएं हैं। मृणाल पांडे और ममता कालिया की स्थिति कुछ भिन्न है। राजी सेठ का लेखन भी अलग बहस की मांग करता है। मंजुल भगत या मेहरुन्निसा परवेज के लेखन पर किसी तरह की चर्चा पर वे असंगतियां भारी पड़ सकती है, जिनके पीछे उनके लेखकीय असमंजस काम कर रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ दृष्टिकोण के लिए संघर्ष नदारद है। पैराग्राफ चेंज, उषा प्रियंवदा और मृदुला गर्ग में आधुनिक स्त्री की अभिशप्त नियति को निर्विकल्पता से आक्रांत होकर देखा गया है। इनके स्त्री चरित्र आत्मसम्मोहित और फर्क के बलिदानी है। मृदुला गर्ग में गहरी भावुकता है, किंतु उनके शिल्प में बौद्धिकता का आग्रह अधिक है। उषा प्रेमदा यथार्थ को पूरी तरह मार्मिक प्रभाव छोड़ने के लिए संयोजित करती है। पृष्ठ संख्या 10, इनकी रचनाओं में नागरीय समाज है और प्रायः यह समाज अमूर्त या बोझिल है, फलतः यह व्यक्ति और समाज की टकराहट को वस्तुवादी दृष्टि से देखना ही संभव नहीं हो पाता। मुख्य चरित्र के लिए घटनाओं या स्थितियों के नियोजन का ध्यान तो रखा जाता है, मगर शेष समाज लेखकीय तर्कों से आक्रांत होकर ही रूप लेता है। सामाजिक संबंधों का भी चक्रण पूर्ण पक्ष ज्यादातर उभर कर सामने आता है। अस्तित्ववादी रुझाने यह काफी असरदार दिखाई देती है। पैराग्राफ चेंज। इसीलिए जहां तक हिंदी उपन्यास लेखिकाओं के लेखन के संदर्भ में आधुनिकता या आधुनिकता बोध का अर्थ समझाने की बात है, इसे मुख्य रूप से मल्लू भंडारी और कृष्णा सोबती के लेखन के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। इनमें उन सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्नों से जूझने का अंदाज है जिसके द्वारा महिला लेखन और पुरुष लेखन की हास्यास्पद सीमाएं मिट जाती हैं और लेखक का केवल लेखन ही अपने सार्थक निरर्थकता की कसौटी पर होता है। समाप्त।